नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अभी आप मुरी शोभा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील में G20 शिखर सम्मेलन में ग्लोबल साउथ की समस्याओं का उल्लेख किया। राष्ट्र से खाद्य पदार्थों, ईंधन और उर्वरक आपूर्ति पर वैश्विक संघर्षों के प्रतिकूल प्रभाव पर ध्यान देने का आग्रह। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री ने विभिन्न नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक की। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत को फिर से शुरू करने की घोषणा की। झारखंड और महाराष्ट्र में कल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी तैयारियां पूरी। चार राज्यों की 15 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव कल। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, देश ने संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में हिंसा को कम करने में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। राजधानी क्षेत्र दिल्ली में हवा की गुणवत्ता बेहद गंभीर स्थिति में पहुंची। दिल्ली सरकार ने कृत्रिम बारिश करने के लिए क्लाउड सीडिंग की अनुमति देने का केंद्र से आग्रह किया। महिला एशियाई चैंपियंस हॉकी के सेमीफाइनल में भारत आज शाम जापान से खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब विकसित और विकासशील देश ग्लोबल साउथ की दुर्दशा पर बल देते हुए ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में G20 शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने वैश्विक संघर्षों का खाद्य, ईंधन और उर्वरक आपूर्ति पर पड़ने वाली प्रतिकूल प्रभावों का उल्लेख करते हुए ग्लोबल साउथ के देशों की चुनौतियों को प्राथमिकता देने का आग्रह G20 देशों से किया। भुखमरी और निर्धनता के विरुद्ध लड़ाई और सामाजिक समावेशन पर आयोजित सत्र को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने वैश्विक संघर्षों का ग्लोबल साउथ के देशों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान लिए गए जन केंद्रित निर्णयों को आगे बढ़ाने के लिए ब्राजील की सराहना भी की। उन्होंने भारत के G20 विषय पर पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य की टिकाऊ प्रासंगिकता की पुष्टि की। श्री मोदी ने समावेशी वैश्विक शासन सुधारों का आह्वान किया। यह शिखर सम्मेलन 80 राष्ट्रों के समर्थन से निर्धनता और भुखमरी से निपटने के लिए वैश्विक गठबंधन के शुभारंभ का साक्षी बना। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने इस पहल को सराहनीय बताया। यह पहल खाद्य सुरक्षा और सामाजिक उन्नयन प्रयासों के प्रति भारत के पूर्ण सहयोग की पुष्टि करती है। भारत की घरेलू उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि पिछले दशक में 25 करोड़ से अधिक लोगों की निर्धनता से उबारा गया है। देश में 80 करोड़ नागरिकों को निशुल्क अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं 55 करोड़ नागरिकों को विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ दिया गया है। श्री मोदी ने अफ्रीका और अन्य क्षेत्रों को दी जाने वाली सहायता सहित वैश्विक खाद्य सुरक्षा में भारत के योगदान को भी साझा किया। उन्होंने कहा कि भारत में डिजिटल जन अवसंरचना और आकांक्षी विकास कार्यक्रम समावेशी विकास को बढ़ावा दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने ग्लोबल साउथ की आवाज को मुखर करने के लिए वैश्विक शासन में सुधारों की आवश्यकता को दोहराते हुए अपने संबोधन को समाप्त किया। उन्होंने कहा कि भारत ने G20 की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीका संघ को इसमें शामिल करके एक ऐतिहासिक पहल की है। G20 के पहले दिन प्रधानमंत्री ने इंडोनेशिया, पुर्तगाल, इटली, इंग्लैंड और नॉर्वे के राष्ट्रीय अध्यक्षों की से मुलाकात की। सभी द्विपक्षीय बैठकों में प्राथमिकता बिंदु आपसी हित के विभिन्न क्षेत्र में सहयोग की समीक्षा करना था। द्विपक्षीय व्यापार और सहयोग के विभिन्न क्षेत्र पर चर्चा। इन बैठकों का एक प्रमुख आकर्षण इंग्लैंड में दो नए वाणिज्य दूतावासों की घोषणा थी। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता के दौरान व्यापार, पर्यटन, रक्षा, कनेक्टिविटी के क्षेत्र में सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया गया। वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करते हुए उन्होंने G20 के भीतर घनिष्ठ सहयोग और ग्लोबल साउथ को प्राथमिकता देने पर चर्चा की। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री लुइस मोंटे नेग्रा के साथ अपनी द्विपक्षीय वार्ता में दोनों नेताओं ने अक्षय ऊर्जा और हरित हाइड्रोजन में सहयोग के क्षेत्र पर प्रकाश डाला। मजबूत रक्षा संबंधों, लोगों से लोगों के बीच संबंधों और अन्य विषयों पर भी चर्चा की गई। क्षेत्र विकास और भारत यूरोपीय संघ संबंधों सहित आपसी हित के वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने के अलावा आईटी डिजिटल प्रौद्योगिकियों स्टार्टअप और नवाचार के उभरते क्षेत्र पर भी चर्चा की गई। एक अन्य द्विपक्षीय बैठक में श्री मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर से मुलाकात की। उन्होंने अक्षय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन और नीली अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में दोनों के बीच निवेश संबंधों पर सुधार के क्षेत्र के बारे में चर्चा की। प्रधानमंत्री ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के बिंदु के रूप में भारत की आर्कटिक नीति का उल्लेख किया। भारतीय यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौतों पर हस्ताक्षर के आलोक में व्यापार और आर्थिक सहयोग भी चर्चा का विषय रहे। प्रधानमंत्री ने ब्रिटिश पीएम सर कीर स्टार्मर से भी मुलाकात की। यह पहली बार है कि दो नेता मिल रहे हैं। दोनों ने अर्थव्यवस्था, व्यापार, नई और उभरती प्रौद्योगिकियों आदि पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत यूके व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। दोनों ने भारत से ब्रिटेन में आर्थिक अपराधियों के मुद्दे को संबोधित करने के महत्व पर ध्यान दिया। प्रधानमंत्री ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ बैठक में अंतरिक्ष, ऊर्जा, एआई और अन्य भविष्य के क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया। प्रधानमंत्री ने फ्रांस में आगामी एआई एक्शन समिट आयोजित करने के लिए राष्ट्रपति मैक्रों का स्वागत किया। उन्होंने भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की और साथ ही क्षितिज 2047 रोडमैप में उल्लेखित सहयोग पर अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के लिए अपने साझा दृष्टिकोण की पुष्टि की। उन्होंने भारत के राष्ट्रीय संग्रहालय परियोजना पर सहयोग की प्रगति की भी समीक्षा की। झारखंड में कल दूसरे चरण के मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। इस चरण में 12 जिलों की कुल 38 सीटों पर मतदान होगा। सुरक्षा कारणों से झारखंड में 31 मतदान केंद्र पर मतदान शाम 4 बजे तक होगा, क्योंकि ये मतदान केंद्र नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्थित है। इस चरण में 55 महिलाओं समेत 528 उम्मीदवार मैदान में हैं। 1,23,00,000 से अधिक मतदाता इन उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला करेंगे। जिन महत्वपूर्ण उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला होगा उनमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, स्पीकर रविन्द्रनाथ महतो, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, विपक्ष के नेता अमरनाथ कुमार बाउरी, आजसू अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो और कल्पना सोरेन शामिल है। 4 मंत्री इरफान अंसारी, हफीजुल हसन, दीपिका पांडे सिंह और बेबी देवी भी मैदान में हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि मतदान प्रक्रिया की निगरानी के लिए लाइव वेबकास्टिंग की जाएगी। सुचारू मतदान के लिए राज्य भर में कुल 14,218 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और इनमें 7,000 बूथों को सुरक्षा के दृष्टिकोण से संवेदनशील बूथों की श्रेणी में रखा गया है। परेशानी मुक्त मतदान सुनिश्चित करने के लिए संवेदनशील क्षेत्र में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 600 कंपनियों को तैनात किया गया है। यह चरण राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और इंडिया गठबंधन दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। 2019 के विधानसभा चुनाव में इन 38 सीटों में से झारखंड मुक्ति मोर्चा में 13 सीटें जीती थी। भाजपा ने 12, कांग्रेस ने 8 और सीपीआईएमएल ने 1 सीट जीती थी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की 288 सीटों के लिए कल मतदान होने जा रहा है। विधानसभा चुनाव के साथ साथ नांदेड़ लोकसभा सीट के लिए भी कल उपचुनाव होने हैं। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान महाराष्ट्र में 61.33% मतदान हुआ था। चुनाव आयोग के अनुसार शहरी और युवा उदासीनता का मुद्दा चुनाव आयोग के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। लोकसभा चुनाव 2024 में मुंबई में 52.4% मतदान हुआ था, जो 2019 के चुनाव में 55.4% मतदान था। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।